नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही।
हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन में तमिलनाडु के किसानों के एक समूह से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि वे किसानों के अनुभव और नई कृषि तकनीकों को अपनाने के उनके प्रयासों के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हैं। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना आज जारी कर दी है। नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा को गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए अधिकृत किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि एनडीए संसदीय दल के नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया।
एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक में प्रस्तावना पास किया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो सब सर्वसम्मति से एनडीए पार्टी समर्थन करेंगे।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज लगातार चौथे दिन भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन ने तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक देश के तटीय जल क्षेत्र में व्यापार करने वाले जहाजों को विनियमित करता है। लोकसभा ने आज मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 भी पारित कर दिया। ये मणिपुर वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण लाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख सेग्रई शोइगू से मुलाकात की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत का रूस के साथ प्रगाढ़ और दीर्घकालिक संबंध है और वह इस संबंध को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे और उनकी यात्रा की तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं।
We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is these summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. So I do hope that our this meeting at this point of time will give us some new ideas.
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमनाडेज मार्कोस जूनियर ने एशिया में विकास के लिए भारत के साथ व्यापक साझेदारी की अपील की है। वे आज बेंगलुरु में फिलीपींस भारत व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और साइबर सुरक्षा जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली और हरशिर क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य आज तीसरे दिन भी जारी है। सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतियोगिता मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और नागरिक माय भारत पोर्टल पर क्विज में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।